3 दिन काम करने के बाद बोल देते थे कि अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, और इस तरीके से मुझे हर बार वो लोग निकाल देते थे। तो ऐसे जब 2 बार मैं निकलने के बाद मेरी हालत इस जगह पे पहुंच गई थी कि मेरे पास खाने को पैसे भी नहीं थे।
हेलो एंड वेलकम टू द जोश टॉक्स पॉडकास्ट, वेयर वी स्पीक टू इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया। आई एम योर होस्ट सिद्धांत नाग, एंड टुडे वी आर स्पीकिंग टू प्रशांत पाटिल, हु ओवरकेम मल्टीपल डिफिकल्टीज ऑन हिज पाथ टू अचीव हिज ड्रीम्स थ्रू द स्टॉक मार्केट। Hello Prashant, welcome to the Josh Talks podcast. Our first environment and ecosystem, our home, enables us to become the people we want to be. तो क्या आप हमें अपने family background के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं?
तो मैं एक छोटी सी family से belong करता हूँ। हम सूरत में एक छोटे से कमरे के अंदर रहा करते थे, और मेरे डैड जो है हमारा घर का खर्चा चलाने के लिए हमारे ही स्कूल के अंदर बस ड्राइवर का काम किया करते थे। दोपहर को मेरे डैड रिक्शा चलाते थे और शाम को मेरे डैड पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते थे। हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरे डैड के पास चप्पल पहनने के लिए भी नहीं हुआ करते थे, वो बिना चप्पल के काम सारे काम किया करते थे, तीनों काम जो है वो बिना चप्पल के। और 3 जॉब इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि हमारा घर का खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, तो वो पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए तो इसी वजह से मेरे जो मामा हैं वो भी हमें सपोर्ट किया करते थे। सो उनके वो भी जो भी काम करते थे वो हमें थोड़ा शेयर करते थे उनके पैसे, ताकि हमारा घर ठीक से चल पाए, मैं और मेरे भाई की पढ़ाई ठीक से हो पाए। वहाँ से हमने शुरुआत किया था। उसके बाद मेरे पापा नेटवर्क मार्केटिंग में आए। पापा नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारी कंडीशन जो है वो धीरे 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 करके सुधरने लगी, और हमारे पास थोड़े थोड़े करके पैसे आने लगे, मंथली इनकम थोड़ा जनरेट होने लगा, जो कि पापा दूसरे यहाँ से करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा होने लगा। तो मेरे डैड ने डिसाइड किया कि वो शिफ्ट होंगे नंदुरबार को। महाराष्ट्र में एक छोटा सा सिटी है, वहीं से 11 किलोमीटर्स पे मेरा गाँव है, मैं भालेर गाँव से हूँ। तो वहीं पर मेरा विलेज था, और पापा को नेटवर्क मार्केटिंग महाराष्ट्र के अंदर अच्छे से आती क्योंकि उनके जो अपलाइन में थे वो महाराष्ट्र से थे, तो उनको थोड़ा हेल्प हो जाता इस वजह से। फिर मेरे डैड यहाँ पे आने के बाद डैड ने धीरे धीरे करके बिजनेस को जो है वो ग्रो करना स्टार्ट किया। हमने रेंट पे स्टार्टिंग में मकान लिया था, रेंट के मकान से फिर डैड ने प्लॉट खरीदा उन्हीं बिजनेस से, धीरे धीरे करके फिर उस घर को हम बनाने लगे वहाँ पे, क्योंकि डैड का सपना था कि वो चाहते थे कि उनका एक खुद का घर हो, और डैड के बहुत ही बड़े सपने थे। बट होता ऐसा था कि पैसे कम होने की वजह से प्लस उनके ऊपर फैमिली बर्डन, बच्चों का बर्डन और सारा संभालना पड़ता था उन्हें खुद से ही, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं था, उनकी फैमिली थ्रू किसी का भी सपोर्ट उनको नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनको खुद के दम पे कुछ ना कुछ करना था। तो मेरे डैड को खुद का घर बनाना था सबसे पहले, तो मेरे डैड ने पहले तो जैसे ही उनके पास पैसे आते थे वो प्लॉट खरीदा उन्होंने। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज़ है वो 3 महीने चलती है, उसके बाद 6-7 महीने बंद हो जाती है और फिर से नई कंपनी ढूंढनी पड़ती है और फिर 3 महीने चलती है। तो जो 3 महीने में जो भी पैसे बनते थे उसी के ऊपर ओवरऑल जो पूरा घर है वो चलता था, और ओवरऑल जो 6 महीने जो होते थे बीच के, उस 6 महीने के अंदर हमारे जो 3 महीने में जो हमने कमाया है उसी के ऊपर उस 6 महीने चलाना पड़ता था। तो जो जब भी जिस भी कंपनी से थोड़ा ज़्यादा पैसा बनता था हम उससे हमारा थोड़ा थोड़ा करके घर बनाते थे। वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद उस हमारे खुद के घर के अंदर शिफ्ट होने के बाद हमने वहाँ पे एक छोटी सी शॉप बनाई, जिससे कि अगर 6 महीने में कोई भी कंपनी बंद होती है तो हम एटलीस्ट उस शॉप से थोड़ा बहुत घर का खर्चा, खाने का खर्चा और वो सारी चीज़ें चल जाए। और इसी तरह हमारा मकान जो था वो कच्चा था, उस वक्त कुछ भी टाइल्स वगैरह लगाई नहीं गई थी, तो हम उसी घर में डायरेक्टली शिफ्ट हो गए क्योंकि हमें रेंट का खर्चा ज़्यादा पड़ जाता था जब भी कोई कंपनी बंद हो जाती थी।
आप एक रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, पर आपकी ड्रीम्स तो रेगुलर नहीं थे। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आप किस फील्ड या स्ट्रीम को चुनेंगे जिसमें आपके सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम हो?
उस वक्त जब हमें सारी चीज़ें मिल रही थी तब मेरा इंटरेस्ट जागा फिटनेस फील्ड के अंदर। मैं फिटनेस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और इसीलिए मैं चाहता था कि मैं फ़िटनेस फील्ड के अंदर ही अपना करियर करूं। तो इसी वजह से फिर मैं ढूंढने लगा कि फ़िटनेस फील्ड के अंदर कौन से करियर हुआ करते थे। तो मुझे पता चला कि अगर कुछ अच्छा करियर करना है तो बैचलर्स इन एक्सरसाइज स्पोर्ट्स साइंस का कोर्स मैं कर सकता हूँ, जिसके अंदर मेरा अच्छा करियर हो सकता है। ये मुझे यूट्यूब से और कुछ जो नोन पर्सन्स थे उनके पास से पता चला था, जो कि फ़िटनेस फील्ड में नोन थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बैचलर्स इन एक्सरसाइज स्पोर्ट्स साइंस जो कोर्स है ये इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज के अंदर हुआ करता था, उस वक्त DY पाटिल मुंबई में। बट वहाँ पे उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप बाहर जाके ये कोर्स करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन आगे इस फील्ड के अंदर। तो ये जब मैंने उनसे सुना तो मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं वहाँ पे जा सो सकता हूँ, बट ये मैं घर पे जब बोलूँगा और हमारी जो अभी कंडीशन है तो क्या पापा ये मानेंगे और क्या हम ये खर्चा पूरा झेल पाएंगे। तो मैंने फिर मैं घर पे गया, घर पे जाने के बाद मैंने मेरे डैड को बोला कि डैड मुझे फिटनेस फील्ड के अंदर ये कोर्स करना है, बट ये जो कोर्स है अगर हमने यहाँ से किया तो वो हो नहीं पाएगा, हम इसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बाहर से करूँ, और अगर मैंने बाहर से कर लिया तो इस कोर्स के अंदर बहुत ही अच्छा मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ। तो फिर मेरे डैड ने मुझे हाँ बोल दिया उस वक्त, और मेरे डैड भी उस वक्त फिर हमने डिसाइड किया कि वो भी जो मेरे 2 साल अभी बाकी है, 12th के बाद मुझे जाना था, तो उन्होंने प्लान किया कि 2 साल तक वो अच्छे से ग्रो करेंगे उनके बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को, और वो अच्छे से इतना पैसा बना लेंगे कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ। आयल्स के अंदर मुझे 6.5 बैंड चाहिए थे लंदन जाने के लिए, और इसलिए मैंने मेरी तैयारी चालू कर दी थी। बट उस तैयारी के वक्त डैड मुझे ये नहीं बुला करते थे कि अभी उनके पास कितने पैसे बचे हैं और क्या पैसे बचे हैं पूरा ओवरऑल लंदन का पूरा खर्चा करने के लिए, क्योंकि डैड चाहते थे कि मेरा सपना एटलीस्ट ब्रेक ना हो और मेरे सपने के अंदर कोई भी तरीके की तकलीफ ना आए और मेरा सपना पूरा हो जाए। मेरे डैड ने एजुकेशन लोन लिया हमारे घर के ऊपर, होम लोन लिया, 24 लाख रुपए का लोन लिया था, और मेरे डैड ने ऐसा सोचा ओवरऑल जो मेरे कॉलेज की फ़ीस है वो 34 लाख है, तो जो और कोई कंपनी आएगी उससे मेरे डैड खर्चा सब चला लेंगे और सारा फीस हम पे कर देंगे। तो हमने कम एजुकेशन लोन लिया 24 लाख का हमारे घर के ऊपर, और उस एजुकेशन लोन के बेसिस के ऊपर मैं लंदन गया, मैंने आयल्स दिया, 2 बार मैं फेल हुआ, 3री बार जाके मैं जैसे तैसे पास हुआ। मेरा इंग्लिश बहुत वीक था क्योंकि मैं सेमी इंग्लिश कॉलेज से था, हम इंग्लिश हमारे यहाँ पे नंदुरबार सिटी के अंदर बहुत कम बोली ही नहीं जाती है, कोई इंग्लिश में बात ही नहीं करता है, तो इंग्लिश मेरा बहुत वीक था। मैंने जैसे तैसे 3 महीने के अंदर प्रिपेयर करके आयल्स देके मैं लंदन आ गया। अभी लंदन आते वक्त मेरे डैड ने कहा था कि हमारे पास सिर्फ आधी कॉलेज फ़ीस है, हमें बाकी का जो खर्चा है वो वहाँ पे तुझे काम करके करना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि मेरे ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, और हमारी जो कंपनीज़ है वो बंद हो चुकी है, तो अभी हमें जब तक मुझे नई कंपनी या कुछ नया काम नहीं मिलता है तब तक तुझे अपना खर्चा चलाना पड़ेगा, बाकी कॉलेज का खर्चा मैं देख लूँगा, रेंट और वहाँ का खाने का खर्चा तुझे करना होगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। मैं घर से 50,000 रुपये लेके निकला और 50,000 रुपीज़ मैं वहाँ पे जाने के 7 डेज़ के अंदर सारे पैसे ख़त्म हो गए। जब मेरे पैसे 7 दिन में ख़त्म हो गए तो मेरे डैड ने उस दिन तो मुझे कुछ नहीं कहा, बट 1 महीने के रेंट भरने के बाद मेरे डैड का मुझे कॉल आया कि गुरु अब मैं तुझे आगे पैसे नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अभी घर में कोई भी अभी घर की हालत बहुत ख़राब है, तो तू ट्राई करके जल्दी से जल्दी तू जॉब फाइंड आउट कर ले और वहाँ से जो भी अर्निंग होगा उससे तू तेरा घर और तेरे खाने का खर्चा चला।
इफ यू लाइक व्हाट यू आर हियरिंग एंड यू लाइक टू हियर मोर इंस्पायरिंग टॉक्स लाइक दिस, देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक द फॉलो बटन एंड द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट। नाउ लेट्स कंटिन्यू। समटाइम्स आवर प्रॉब्लम्स लीव अस लॉस्ट एंड फीलिंग हेल्पलेस, लेकिन आप हिम्मत करके उस स्थिति से बाहर आए। Could you please take us through the challenges that you faced after your father's statement?
Dad ने जैसे ही मुझे वो बोला मैं जल्दी से CVs बनाने लगा। CV भी बनाना मुझे नहीं आता था, तो मैंने CV मेरे दोस्त से बनाने का सीखा और CV बनाया, और उसके बाद जितने भी लंदन के अंदर स्टोर्स थे मैं उन स्टोर्स के ऊपर मेरे CVs बांटने लगा ताकि कोई तो भी मुझे पार्ट टाइम जॉब दे दे। उस वक्त पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं जब कॉलेज स्टार्ट होती है उस वक्त मिल जाता है, बट मैं थोड़ा लेट आया था इस वजह से मुझे पार्ट टाइम जॉब जल्दी नहीं मिल रही थी। तो मुझे ओवरऑल 2 मंथ लग गए पार्ट टाइम जॉब मिलने के लिए, और जब मैं गया था तब मैं सिर्फ 17 साल का था, तो मुझे जल्दी से जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो मेरा जो एजुकेशन है, मैं जो एजुकेशन वहाँ पे करने गया हूँ, मेरे क्लासेस के अंदर मेरा थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता था क्योंकि मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से क्लासेस के ऊपर ध्यान दे पाऊँगा, कहाँ से मेरी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे पाऊँगा। प्लस जब मैं यहाँ से लंदन गया तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आती थी, उसे समझने में मुझे कुछ टाइम चाहिए था। जो मेरा प्रोफेसर कहता था वो मुझे समझ नहीं आता था, मुझे बहुत दिक्कत होती थी वो जो बोल रहे हैं वो समझने में, और पढ़ाई करने में भी बहुत दिक्कत हुआ करती थी क्योंकि वहाँ का जो करिकुलम था क्लासेस का वो सारा अलग था और हमारे यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो सारा अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी, प्लस मुझे काम करके घर का खर्चा भी चलाना था जो मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही थी। इन काम करने के चक्कर में मैंने मेरे जो कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट्स थे उनमें से दो सब्जेक्ट के अंदर मैं फ़ेल हो गया, और सारा काम करना पड़ता था, इस वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा था अपने स्टडी के ऊपर। जब वहाँ पर लॉकडाउन लगा उस वक्त वहाँ पे बहुत डर का माहौल हो गया था और सब लोग बहुत डरे हुए थे। इंडिया में तब तक लॉकडाउन लगा नहीं था, वहाँ पे पहले लग गया था। जब डर का माहौल ज़्यादा होने लगा और वहाँ पे मेरे खर्चे अब पूरी तरीके से हो नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरे पास कोई भी जॉब नहीं था, वहाँ पे सारी जॉब्स जो है वो बंद हो चुकी थी और कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मैं घर पर जाता हूँ और जब तक ये लॉकडाउन चलता है मैं मेरा जो कॉलेज है ऑनलाइन करूँगा, मैं मेरा जो कॉलेज है वो ऑनलाइन करूँगा। तब तक कॉलेज भी बंद था और कॉलेज भी जो है वो ऑनलाइन चल रहा था, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अभी घर पे जाता हूँ जिससे कि मेरा जो यहाँ का रहने का खर्चा है वो भी नहीं होगा और खाने पीने का तो घर पे हो जाएगा। तो फिर मैंने टिकट बुक किया मेरे दोस्तों से पैसे लेके और मैं घर पे चला गया।
इस मुश्किल वक्त के दौरान आपको स्टॉक मार्केट में आने का रास्ता किसने बताया और आपने फिर ये राह कैसे चुनी? आखिरकार आपने अपने गोल्स इस अनजान फील्ड में कैसे अचीव किए?
जब मैं सेकेंड टाइम लंदन आया उस वक्त मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त है वो एक, जब हम जॉब पे जा रहे थे वो एक ऐप के अंदर स्क्रॉल कर रहा था जहाँ पे कैंडल्स दिख रही थी बहुत सारी, तो मैंने उससे क्यूरियस होकर पूछा कि यार ये क्या है, ये तू क्या कर रहा है? तो उसने मुझे कहा कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। तो जब उसने स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई तू कितना कमाता है, क्या है, कुछ कमाई होती है और क्या मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे सिखाएगा? तो मैंने इस तरीके से क्यूरियस होकर पूछा। मुझे उस वक्त तक कैंडल्स कैसे रीड करते हैं, वो कैंडल्स का ऐप कौन सा है, डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से ऐप हुआ करते हैं, वो इसमें से कुछ भी नॉलेज नहीं था। स्टॉक मार्केट के अंदर मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैंने फिर एक कोर्स बाय किया, उस कोर्स बाय करने के बाद मुझे उस कोर्स के अंदर सारे के सारे इंडिकेटर सिखाए गए। तो उस कोर्स के अंदर बहुत सारे भर भर के इंडिकेटर सिखाए गए और सारी चीज़ें सिखाई गई। मुझे बेसिक तो पता चल गया कि स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कैसे होता है, फ्यूचर्स वगैरह सब कुछ, कमोडिटी सब समझ आ गया, बट अभी भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर YouTube के ऊपर और सर्च आउट करने लगा, ये जो ओवरऑल कोर्स किया था उसका मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। उस कोर्स के अंदर सिर्फ मैं कमोडिटीज़ के बारे में जान पाया। कमोडिटीज़ में मैंने सिल्वर के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया। सिल्वर के ऊपर मैं डाइवर्जेंस में ट्रेड करता था तो एक जो मंथ था उसके अंदर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में रहा क्योंकि वो मंथ जो है ओवरऑल साइडवेज सिल्वर चल रहा था, उस वजह से मैं प्रॉफिट में रहा। तो उसके अंदर जब मैंने प्रॉफिट बना लिया उसके बाद घर वालों को लगने लगा कि मैं अच्छा इसके अंदर बन जाऊंगा, अच्छा इसके अंदर प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। बट कुछ महीनों बाद वो सिचुएशन भी ख़राब होने लगी, उसमें भी मैं प्रॉफिट नहीं कमाने लगा और हमारे घर की हालत जो है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो इस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से लंदन जाता हूँ, अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं इससे मुझे हेल्प होगा कि मैं ओवरऑल वहाँ का खर्चा निकाल पाऊँ, और घर पर ये ऐसी कंडीशन मैं देख नहीं सकता क्योंकि उस वक्त घर पे ऐसी कंडीशन थी जब मैं स्टॉक मार्केट का सीख रहा था, घर पे कोई भी कमा नहीं रहा था, किसी से भी अर्निंग नहीं आ रही थी और घर के अंदर बहुत निगेटिव माहौल हो गया था और मेरे डैड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। लोगों के फ़ोन्स आते थे, धमकियों के कॉल्स आते थे, उस वजह से मेरे डैड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। तो मेरे डैड जब हम बैठते थे तब डैड डायरेक्टली रोने लग जाते थे और सुसाइडल थाट्स आते थे। तो घर में सब, जब मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे, बहुत ज़्यादा आने लग गए थे क्योंकि मैं डैड की कंडीशन जो है वो देख नहीं पा रहा था। तो उस वजह से मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं अभी फिर से जाता हूँ लंदन और करता हूँ कोर्स, मेरा जो ओवरऑल है वो कंप्लीट करता हूँ। क्योंकि मेरे डैड बार बार बोल रहे थे कि गुरु अगर तूने डिग्री कंप्लीट नहीं किया तो बाकी के लोगों को हम क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा वैसा, तो ये बार बार डैड बोलते थे। मेरी बिल्कुल भी जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि मैं वो ओवरऑल एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता, ये मुझे पता था। बट घर वालों की प्रेशर की वजह से मैं फिर से एक बार लंदन गया और इस वक्त जब मैं लंदन जाने वाला था, इससे कुछ दिन पहले डैड की तबीयत जो है वो अचानक से ख़राब हो गई। डैड की तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे लगा कि डैड मेरे स्मोक कर किया करते थे, तो मुझे लगा कि स्मोकिंग की वजह से कुछ हुआ होगा या तो कुछ हेल्थ इशू होगा उसकी वजह से हुआ होगा। बट जब मैं लंदन जाने के लिए कार में बैठा और वहाँ से फिर हम एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट जाते वक्त बीच में मेरे दोस्त का कॉल आया कि तुझे अर्जेंटली पैसे भरने पड़ेंगे डिपॉजिट, वो अगर तू अभी नहीं भरेगा तो यहाँ पे आके रहेगा कहाँ पे। तो फिर मैंने मेरे डैड को कॉल किया, मेरे अंकल ने मुझे कहा कि डैड को कॉल करेगा तो सिर्फ थोड़ा सा ठीक से बात करना, उन्हें टेंशन मत देना या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस मत देना। तो मुझे थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आया कि ऐसे अंकल ने क्यों कहा, तो मैं तो अलग ही ये में था कि डैड को सिर्फ थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम है और कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, तो मुझे ऐसे ही लगा था, क्योंकि डैड ने घर पे किसी को भी कुछ नहीं बताया था, सिर्फ मेरे अंकल को और मेरे बड़े भाई को पता था। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, मैंने घर पे फ़ोन लगाया, मेरे डैड को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि मुझे ऐसे पैसे लगने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तो नहीं है। तो उस वक्त मेरे अंकल से हमने पैसे मांगे, 30,000 रुपीस कुछ डिपॉजिट भरना था मुझे। उन्होंने कहा कि इस डेट तक, मेरे भाई को बोला कि इस डेट तक तुम्हें ये पैसे भरने ही होंगे और अगर ये पैसे जो है वो तुझे देने ही पड़ेंगे, मेरे भाई को इस तरीके से उन्होंने कहा। मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, हम कुछ भी मैनेज करके वो पैसे जो है वो भर देंगे। फिर मैं लंदन आया, 10 दिन हो गए, 10 दिन होने के बाद मैं मेरे मामा के लड़के से बात कर रहा था, उसने मुझे कहा कि तेरे डैड ठीक है अभी, उस दिन एम्बुलेंस आई थी और घर से कुछ पैसे मांगे थे हमारे, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो जब उसने ऐसा कहा तो मैंने कहा किसके डैड और किसके घर पे एम्बुलेंस आई थी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। तो वो कुछ देर के लिए शांत हो गया। कुछ देर के लिए शांत होने के बाद मैंने उसे ज़बरदस्ती पूछा कि भाई तू क्या बोला अभी, प्लीज़ मुझे बता दे और प्लीज़ बता कि किसके घर पे एम्बुलेंस आई थी और किसके डैड के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसके डैड नहीं थे। तो मैं सोचा ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो फिर उसने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि तुझे पता नहीं है, बट तेरे डैड को जिस दिन तू लंदन जा रहा था फ्लाइट के अंदर था, उसी दिन हार्ट अटैक आया था। उसके एक दिन पहले तेरे डैड को कहा गया था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं तो नेक्स्ट दिन उन्हें बचा नहीं सकते हैं अगर रात को कभी भी हार्ट अटैक आता है। तो मेरे डैड ने डॉक्टर से कहा था कि सिर्फ एक दिन के लिए मुझे घर पे जाने दो, एक दिन के लिए मैं घर पे जाता हूँ, मेरे बेटे को सिर्फ लंदन के लिए जाने दो, वो अगर मैं घर पे नहीं गया और मैं हॉस्पिटल में अभी एडमिट हो गया तो वो लंदन नहीं जाएगा और फिर से वो जो सपना है उसका वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरा सपना पूरा करने के लिए डैड ने उनकी हेल्थ जो है वो स्टेक पे रखी। डॉक्टर उन्हें बार बार कह रहे थे कि आपको अभी के अभी एडमिट होना पड़ेगा अगर नहीं होते हो, और फिर से अगर आप जब आपको अटैक आएगा उस वक्त आओगे तब हम बचा नहीं पाएंगे। तो फिर मेरे डैड ने उनकी नहीं सुनी और वो घर पे आ गए, मैं गया और उसी वक्त रात को डैड को अटैक आया। जब उनको अटैक आया, जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, तो डॉक्टर ने कहा था कि इनको बचाने के चांसेस बहुत कम है, और जैसे तैसे डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया। और 10 दिन तक उसके बाद भी डैड मेरे से बात कर रहे थे, मुझे ये सारी सिचुएशन पता ही नहीं है, कुछ भी सिचुएशन मुझे उन्होंने पता नहीं चलने दी। ओवरऑल पूरे टाइम पीरियड में मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे डैड ठीक है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप कॉल पर उनसे बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वो ठीक है। बट जब ये पता चला, मैं बहुत रोया, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और उस वक्त मैंने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, अभी आगे का जो करियर है मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी और करता हूँ तो ऐसा होगा कि मुझे और कहीं ना कहीं से पैसे उठाने पड़ेंगे, या तो डैड को कहीं ना कहीं से पैसे उठाने पड़ेंगे और मेरा ओवरऑल फीस कंप्लीट करना पड़ेगा, और ऐसा अगर वो करते हैं तो वो और स्ट्रेस में आ जाएंगे और इस वजह से घर की हालत जो है और ख़राब हो जाएगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से ड्रॉप आउट करता हूँ। फिर मैं वहाँ से घर पे आया, तो फिर जब पैसों की बारी आई, मुझे जब पैसे चाहिए थे, तो मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया, मैंने उसे कहा कि यार घर की सिचुएशन बहुत ख़राब है और मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट नीड है। तो इस नीड के तो फिर मैंने उसे सच नहीं बताया कि मुझे ट्रेडिंग के लिए पैसे चाहिए थे, मैंने कहा कि मुझे घर में नीड है और मुझे घर के लिए पैसे चाहिए, प्लीज़ मुझे पैसे दे दे, मुझे 1,00,000 रुपये की अर्जेंट नीड है। तो उससे मैंने इस तरीके से पैसे मांगे। उस 1,00,000 रुपये के ऊपर मैंने 3-4 महीने के अंदर, फर्स्ट मंथ तो मैं कुछ ब्रेक इवन पे था, बट अगले तीन चार महीने के अंदर मैंने 60% का रिटर्न उस 1,00,000 रुपये पर बनाया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करके। तो मेरे डैड ने सबसे कुछ ना कुछ अमाउंट लिया और उसके ऊपर फिर मैं ट्रेड करने लगा। उनको कहा था कि हमें घर के अंदर लगने वाले हैं, हमारा घर का कंडीशन में हमारी घर की कंडीशन ख़राब है तो हमें इसलिए लगने वाले हैं। उसी अमाउंट पे मैं ट्रेड कर करके मैंने उस अमाउंट के ऊपर खुद का कैपिटल बनाया। खुद का कैपिटल बनाने के बाद मैंने वो जो अमाउंट है वो सारा उन लोगों को रिटर्न कर दिया और आज मैं मेरी फैमिली को, पूरा फैमिली को मैं खुद संभालता हूँ। मेरे डैड को अभी कोई भी दूसरा काम नहीं करने देता, क्योंकि मेरे डैड नहीं चाहते थे कि वो फिर से MLM करे और मेरा डैड दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डैड को संभालने के लिए आज मैं मेरी ओवरऑल पूरी फैमिली में खुद संभालता हूँ। मेरी मंथली अर्निंग जो है वो हर मंथ मैं 2 लाख रुपये कमाता हूँ, जिससे कि कुछ मैं हफ्ते भर देता हूँ और बाकी का सारा खर्चा चलता है। मेरे डैड आज बहुत खुश है और वो गर्व से सीना चौड़ा करके चल सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे डैड को कहा था कि उनका बेटा कुछ नहीं कर सकता है, वो आज हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है और मेरा पूरा का पूरा घर जो है वो ट्रेडिंग के दम पर चलता है। ओवरऑल मैं जो भी कमाता हूँ वो ऑप्शन सेलिंग से कमाता हूँ, ट्रेडिंग करके कमाता हूँ।
थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द फॉलो बटन एंड द बेल आइकॉन टू कीप अप विद जोश। यू कुड ऑल्सो क्लिक द 3 dots एंड देन द शेयर बटन to send a dose of inspiration and Josh to your friends and family. We hope that today's episode encourages you to take action and achieve your goals, and we'll see you in the next episode of the Josh Talks podcast with me, Siddhant Nag.